नमस्कार, आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड का स्पेशल पॉडकास्ट।
अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा धमाका कर दिया है। मध्य प्रदेश में उसने अपनी सत्ता बनाए रखी है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य उसने कांग्रेस से छीन लिए हैं। बीजेपी की इस जीत का विपक्ष के लिए क्या मतलब है? क्या 2024 के आम चुनाव में बीजेपी एक तरफा जीत दर्ज करने जा रही है? ऐसे कई सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी। राजकुमार जी, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, 5वें का नतीजा आया है। कांग्रेस ने जैसा प्रदर्शन किया है उसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या अगले साल आम चुनाव जो होने हैं उसमें बीजेपी की राह जो है एकदम आसान हो गई है?
देखिए, जिन 5 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें से 4 में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक है। उसने सिर्फ एक राज्य तेलंगाना में अच्छा प्रदर्शन किया है, बल्कि कह सकते हैं शानदार प्रदर्शन किया है और सत्ता हासिल की है, लेकिन बाकी 4 राज्यों में मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हिस्से सिर्फ निराशा आई है। मिजोरम पूर्वोत्तर राज्य है, छोटा सा राज्य है और कांग्रेस लंबे समय तक वहां सत्ता की दावेदार रही है। MNF कभी सत्ता में आता रहा, कभी कांग्रेस आती रही, तो उस नजरिए से कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए वहां का नतीजा भी निराशाजनक है, क्योंकि इस बार ऐसा माना जा रहा था कि शायद त्रिशंकु विधानसभा होगी और जो नई सरकार बनेगी वो बिना कांग्रेस के नहीं बन पाएगी, लेकिन वहां भी निराशा हाथ लगी है। पर अगर राष्ट्रीय राजनीतिक दृष्टि से बात करें, अगले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बात करें जो 4 महीने दूर हैं, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों की हार कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सदमा है। 2018 में तीनों राज्यों में कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता छीनी थी। और ये ठीक है कि मध्य प्रदेश में 15 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में 22 विधायकों की बगावत के चलते कमलनाथ सरकार गिर गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों में कांग्रेस सरकारों ने अपना कार्यकाल पूरा किया। लेकिन इन चुनावों में जो परिणाम सामने आए हैं वो सिर्फ इसलिए सदमा नहीं है कि कांग्रेस हार गई या 2 राज्यों में सत्ता से बाहर हो गई, उससे भी बड़ा सदमा यह है कि कांग्रेस कहीं मुकाबले में नहीं दिखी। आप देखें कि लगभग 3 राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस से 2 सीटें हासिल की है। मध्य प्रदेश में तो एक तरह से 2/3 बहुमत बीजेपी को मिला है। तो अगले लोकसभा चुनाव जिसको टारगेट करके अपोजिशन यूनिटी होती है, गठबंधन बनता है 26 दलों का, उससे 4 महीने पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं और जिनको सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, उसमें अगर कांग्रेस का प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहता है
जी,
तो कांग्रेस के लिए भी खतरे की घंटी है और अपोजिशन अलायंस की बात करें
जी
तो उसके लिए भी चिंता की बात है।
लेकिन राजकुमार जी, आपने याद दिलाया कि 2018 में जो है कांग्रेस ने ये 3 राज्य जो है जीते थे और उसके बाद फिर विधान लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस का वैसा कुछ उसकी असर नहीं दिखा लोकसभा चुनाव में। क्या बीजेपी के लिए ये बात की असर दिखेगा ही, ये माना जा सकता है?
देखिए, मुझे लगता है दोनों परिस्थितियों में थोड़ा सा अंतर है। एक 2018 में जो चुनाव हुआ प्रदेश की सरकार के लिए था और आप ये मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 15-15 साल से बीजेपी की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी रहा होगा। राजस्थान के संदर्भ में अक्सर लोग कहते हैं, उस गलत भी नहीं है तथ्यों की दृष्टि से, कि हर 5 साल में या हर विधानसभा चुनाव में सरकार बदलने का एक रिवाज सा रहा है, जो इस बार भी कायम रहा। लेकिन अच्छा, तीसरा कौन इसमें यह हो सकता है कि राज्यों के स्तर पर कांग्रेस के पास अभी भी, या 2018 तक की बात कर लें, तो शायद भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को टक्कर देने वाले या उनके मुकाबले के नेता रहे हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय राजनीति की बात आती है तो सीधे सीधे आप राष्ट्रीय सरकार के गठन के लिए चुनाव करते हैं, प्रधानमंत्री के लिए चुनाव करते हैं, तो वहां बीजेपी का पलड़ा 2014 में जब से नरेंद्र मोदी का उदय हुआ है राष्ट्रीय राजनीति में, तब से बाकी दलों पर भारी पड़ने लगा है। तो मोदी के मुकाबले कोई एक चेहरा न 2019 में उस समय ऐसा था जो लगे कि भाई उनको चुनौती दे सकता है, कोई वैकल्पिक सरकार की कोई संभावनाएं बन सकती है, उस अनुपस्थिति का लाभ बीजेपी को मिला। नहीं, ऐसा कम होता है कि आप विधानसभा में सत्ता से बाहर हो जाएं। विधानसभा चुनाव में सिर्फ ये सत्ता की दौड़ में आप सत्ता से बाहर हो जाएं तीनों राज्यों से, और 4 महीने बाद या 5 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हो तो उन्हीं 3 राज्यों में से जो 65 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं उनमें से 62 सीटों पर आप जीत हासिल कर लें। लोकसभा विधानसभा के चुनाव परिणाम अलग अलग आते रहे हैं, चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते रहे, पर ऐसा चमत्कार बहुत कम होता है कि 4 महीने में नतीजे एकदम उल्टे हो जाएं।
जी,
तो मुझे नहीं लगता कि जैसे बीजेपी ने अब जो जीत हासिल की है वो लोकसभा चुनाव में उसके परिणाम उलट जाएंगे।
जी,
हम ज्यादा से ज्यादा उम्मीद ये कर सकते हैं कि कांग्रेस को जितनी विधानसभा सीटें मिली हैं उसके अनुपात में अगर वो लोकसभा सीटें जीत पाती है तो भी शायद पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन होगा
कांग्रेस का। जी, लेकिन राजकुमार जी, कांग्रेस के अलावा जो बाकी विपक्षी दल हैं, विपक्ष में नेता हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, नवीन पटनायक हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, एमके स्टालिन हैं, पिनाराई विजयन हैं, एक पूरी लिस्ट है, और अपने अपने इलाकों में वहाँ बहुत उनका दबदबा है जहाँ वो अकेले दम पर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, क्या ये लोग लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं?
देखिए, जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका सीधा सा जो संकेत है वो यह है कि जो नया विपक्षी गठबंधन बना है 26 दलों का और जिसका नाम संक्षिप्त में इंडिया बनता है अंग्रेजी में, आप पूछ रहे हो वो चुनौती दे पाएगा क्या इन परिणामों के बावजूद। निश्चित रूप से मकसद वही है, लेकिन इन चुनावों में एक बड़ा नुकसान ये और हुआ है कि नए विपक्षी गठबंधन के जो घटक दल हैं उनमें से कुछ के बीच रिश्ते तल्ख हो गए। नाम लेकर बात करें तो समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, इन तीनों ने मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उतारे। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी उम्मीदवार उतारे, यानी कहीं न कहीं एक अपोजिशन अलायंस के बीच में जो एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए वो टूटा इन चुनावों में। उम्मीद ये कर सकते हैं कि शायद सभी घटक दल थोड़ा सा ज्यादा समझदारी दिखाएंगे और अगले लोकसभा की चुनौती की गंभीरता समझेंगे। हालांकि मुझे थोड़ा सा उसमें संशय इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस की हार पर जितना तंज बीजेपी की तरफ से आया उससे कहीं ज्यादा समाजवादी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आया। फिर भी अगर अगले लोकसभा चुनाव में ये गठबंधन इंटैक्ट रहता है और आपस में जो म्यूचुअल ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है इन लोक विधानसभा चुनावों में उससे उबर जाता है, और उससे भी बड़ी कसौटी होगी जो मुझे लगता है कि चुनावी संघर्ष के लिए एक एकमात्र फार्मूला हो सकता है अगर टक्कर देनी है बीजेपी को, तो है एक के मुकाबले एक। अगर 1-1 फाइट होती है और अपोजिशन अलायंस हर सीट पर बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार, सभी 543 पर न भी हो 400-450 सीटों पर भी एक उम्मीदवार देने की स्थिति बन जाती है, तो अगले चुनाव में टक्कर निश्चित रूप से दे सकता है। लेकिन चुनाव के परिणाम क्या होंगे वो समय के मुद्दों पर निर्भर करेगा, माहौल पर निर्भर करेगा, क्योंकि इन विधानसभा चुनावों में भी ऐसा नहीं लग रहा था कि एक तरफा मुकाबला होगा जो बाद में परिणामों में सामने आया।
जी, आप कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनमें आपस में तल्खी जो उभरी है वो 2024 के आम चुनाव की गंभीरता को देखते हुए उन्हें अपनी रणनीति बदलनी चाहिए, आपस में एकता कायम करनी चाहिए। राजकुमार जी, एक सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जो असेंबली इलेक्शन के नतीजे आए हैं उन्होंने कहा कि 2024 में ये हैट्रिक की जो है एक तरह से तैयारी हो गई है, जो इस तरह का ऊंचा मनोबल है इसके सामने अगर विपक्ष अपने पिछले की तरफ याद करे अपने नेताओं को, मान लीजिए इंदिरा गांधी होती आज या चौधरी चरण सिंह होते आज, तो ये पहले के दौर के जो दूसरे नेता होते, या इवन बीजेपी के ही अगर अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरह उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ हिम्मत जुटाया, तो ये लोग होते तो कैसी रणनीति अपनाते, क्या करते वो लोग ऐसे ऐसी लहर के सामने?
देखिए, रणनीति चुनाव मैदान में ऐसा है, रूल्स बदलते रहे हैं। सिर्फ प्रॉब्लम एक है अपोजिशन के साथ, एक तो बिखराव, और उसमें भी सबसे बड़ा है कांग्रेस का पराभव। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और वो शायद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, तो मनोबल बहुत ज्यादा गिरा हुआ है और उस मनोबल को और झटका दिया है इन विधानसभा चुनावों। इसके बावजूद और कोई तरीका नहीं। देखिए बीजेपी के फेवर में कई चीजें आती है, उनके पास नरेंद्र मोदी का नाम है और चेहरा है, उस उनका अपने आकर्षण भी है और ट्रैक रिकॉर्ड भी है 9.5 साल का। दूसरा बीजेपी के पास बड़ा संगठन है और उनकी जो रणनीति होती है वो भी मुझे लगता है अपोजिशन से कहीं ज्यादा एग्रेसिव होती है और ज्यादा वेल प्लान्ड होती है। तो अपोजिशन के सामने सीमित समय है, 4-5 महीने में आप सब कुछ नहीं बदल सकते। अब आप जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आपस की तलखी से उभरें, अगले चुनाव की चुनौती की गंभीरता को समझें और दलगत हितों से थोड़ा सा ऊपर उठ के व्यापक हित में जहां तक संभव हो एक के मुकाबले एक उम्मीदवार देने की कोशिश करें। लेकिन संकट वही आएगा कि आप जो रणनीति बनाएंगे उसको अंजाम देने के लिए आपके पास एक संगठनात्मक ढांचा चाहिए, जो क्षेत्रीय दलों के पास तो अभी भी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या एनसीपी भी हो, इन दलों के पास है, डीएमके के पास है, बहुत अच्छा संगठन है। कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। तो कांग्रेस को संगठन के मोर्चे पर इन 4 महीनों में कुछ बड़े और कड़े फैसले करने पड़ेंगे। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणामों का संदेश भी है।
जी तो राजकुमार जी, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी और विपक्ष के लिए आपने आपकी ये सलाह है एक तरह से कि आपसी जो मतभेद हैं उनको दूर करें, क्योंकि बीजेपी के पास प्रधानमंत्री के रूप में ऐसा ट्रंप कार्ड है जिनके सामने जो है बाकी नेताओं का एक तरह से जो है ताकत है वो घट जाती है इस तरह। और अगर ये लोग एकजुट नहीं हुए, गंभीरता नहीं दिखाई, तो इनके लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी मुश्किल हो सकती है और बीजेपी एक तरह से एक तरफा बढ़त बना सकती है। राजकुमार जी, आपने विस्तार से जानकारी दी, धन्यवाद आपका।